वही आस्था पहले कुछ देर उस दरवाजे को देखती रही जहां से उसे बेरहमी से निकाला गया था। फिर वो जल्दी से दौड़कर उस कमरे में आ गई जो दादाजी ने उसे रहने के लिए दिया था। वो बेड पर आकर फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि इतना गुस्सा, इतनी नफ़रत उसका नाजुक सा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। आस्था ने कभी किसी की गुस्से भरी आवाज़ तक नहीं सुनी थी, लेकिन यहाँ उसे इतनी नफ़रत का सामना करना पड़ रहा था, और वो भी बिना किसी गलती के। उसे पता ही नहीं था कि आखिरकार उसकी क्या गलती है जो इस तरह से उसके साथ बर्ताव हो रहा है। थोड़ी देर बाद आस्था जल्दी से उठी और अपने आंसुओं को साफ करते हुए शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। वो खुद से कहने लगी, नहीं आस्था, तू इस तरह से नहीं रो सकती है। तूने सुना नहीं उस जल्लाद आदमी ने क्या कहा है? अगर तुमने उसके कमरे में जाने में देर कर दी तो वो ना जाने क्या करेगा। तुझे अभी इस वक्त हिम्मत से काम लेना होगा। इससे पहले कि दादाजी आ जाएं, तो जल्दी से फटाफट अपने कपड़े समेट और वहां चली जा। उस मॉन्स्टर से बचने का यही एक रास्ता है। खुद को तसल्ली देते हुए आस्था उठ खड़ी हुई। उसने उल्टे सीधे अपने कपड़े पैक किए, अपने कपड़े लेकर छोटे से बैग में जल्दी से सारे कपड़े समेट लिए। उन्हें लेकर वो जल्दी ही अरमान के कमरे में चली गई और दरवाज़ा बाहर से खटखटाने लगी। अरमान ने जैसे ही ओपन द डोर बोला, दरवाज़ा तुरंत खुल चुका था। अरमान ने अपने पूरे घर में अपनी वॉइस सिस्टम लागू की थी। उसके बोलने भर से ही सारे काम हो जाया करते थे। आस्था एक बार फिर दरवाज़ा खुद ब खुद खुलते हुए देख हैरान हुई, लेकिन वो जल्दी से बैग थामकर अंदर चली गई। अरमान एक राजा की तरह आस्था की ओर देख रहा था। उसने उसके हाथ में पड़े हुए छोटे से बैग को भी देखा और समझ गया कि शायद इस लड़की के पास ज्यादा सामान और ज्यादा कपड़े नहीं हैं। लेकिन उसने इस बात को फिलहाल नज़रअंदाज कर दिया और कहने लगा, तुम अपना सारा सामान वहाँ साइड वाला जो कॉर्नर है वहाँ रख सकती हो। एक और बात, जल्दी से अपना सामान वहाँ रखो और यहाँ आओ। वो उसे अपने पास आने के लिए कह रहा था। अब तो आस्था और भी ज्यादा डर गई। वो सोचने लगी कि वो तो उसकी सारी बात मान रही है, तो उसे वहाँ क्यों बुला रहे हैं। फिलहाल आस्था ने अपना बैग साइड कॉर्नर पर रख दिया और फटाफट से अरमान के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। तब अरमान ने एक फाइल उसके सामने फेंक दी और कहने लगा, इस फाइल को अच्छी तरह से पढ़ लो और फिर उस पर साइन कर देना। आस्था अरमान की ओर देखने लगी, मानो वो पूछना चाह रही हो कि आखिरकार ये कैसी और कौन सी फाइल है। अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, इस फाइल में साफ साफ लिखा है कि अगले 6 महीने तक तुम मेरे लिए केयरटेकर का काम करोगी। मैं तुम्हें अपने घर में केयरटेकर के लिए अपॉइंट कर रहा हूँ और तुम्हें हर एक महीने की 1 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी। टोटल 6 लाख रुपए 6 महीने में तुम्हें दिए जाएंगे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, उसकी आंखें हैरत से फैल गई थीं। आस्था एकटक अरमान की एक एक बातों को सुन रही थी। अरमान ने जिस अंदाज में ये सारी बातें कही थीं, उससे आस्था का पूरा वजूद हिल गया। अरमान ने आस्था के सेल्फ रिस्पेक्ट पर उंगली उठाई थी। ये बहुत ही शर्मनाक था आस्था के लिए। अरमान ने आज उसे लालची और जालसाज पता नहीं क्या क्या बना दिया। उसने अरमान द्वारा पेश किए गए पैसे के बारे में सोचने लगी। इस क्रूएल मॉन्स्टर के पास इतना सारा पैसा है, लेकिन उसका इतना पैसा किस काम का, जो पैसा इंसान को इंसान ही ना समझे या फिर किसी से बात तक करने की तमीज़ ही ना सिखा सके। उसकी नानी हमेशा उससे कहा करती थी, बेटा, हर चीज़ खरीदी जा सकती है, लेकिन इंसान की मेहनत, उसकी तमीज़, उसके संस्कार, वो कभी भी खरीदे नहीं जा सकते। वो केवल एक अच्छे इंसान के अंदर होते हैं, उन्हें खरीदा नहीं जा सकता। आस्था का दिल तो हुआ कि वो अरमान को कह दे कि उसे उसके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो अपने पैसे अपने पास रखे। अगर अरमान नहीं भी बोलता तो भी वो दादाजी की सेवा ज़रूर करती। ये उसका फ़र्ज़ था, क्योंकि दादीजी ने जो प्यार और विश्वास दिखाया है, उसके लिए तो आस्था कुछ भी करती। यहाँ तक कि दादाजी के कहने पर आस्था इस घर में रहने के लिए भी मान गई थी। दादाजी की सेवा तो वो बिना पैसों के भी कर सकती थी। वो अपनी नानी की सेवा करती हुई आई है। बड़े बूढ़ों की सेवा करने के बदले सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद मिलता है। पैसे लेकर आस्था वो आशीर्वाद खोना नहीं चाहती थी। ये बेवकूफ़ आदमी खुद को समझता क्या है? इसे किसी के इमोशंस की कोई कदर नहीं है। लेकिन ये सारी बातें वो अरमान के सामने नहीं कह सकती थी, इसीलिए वो केवल एकटक उसकी ओर देखती रही। अरमान ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है या तुम बार बार मेरे पेशेंस को चैलेंज कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा है ना, पेन उठाओ और यहाँ पर साइन करो। एक और बात याद रखना, अगर तुमने कभी भी अरमान सिंघानिया के नाम का मिसयूज़ करने के बारे में सोचा तो तुम्हें इसकी बहुत कड़ी सज़ा मिलेगी, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। आस्था ने बिना देरी किए जल्दी ही वो पेन उठा लिया और बिना पढ़े उसमें क्या लिखा है क्या नहीं उसने फटाफट से सिग्नेचर कर दिए, क्योंकि आस्था तो इस वक्त अरमान से अपना पीछा छुड़ाना चाहती थी और फटाफट से उसकी आंखों के सामने से हट जाना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी से कागज़ों पर भी साइन कर दिए थे। आस्था के साइन करते ही अरमान ने एक झटके से वो सारे पेपर्स उठा लिए। फिर वो आस्था की ओर तिरछी मुस्कुराहट से देख रहा था और अचानक से पेपर्स बेड पर फेंक कर वो आस्था की ओर कदम बढ़ाने लगा। आखिरकार क्या थे वे कागज़ जिन पर आस्था ने बिना पढ़े साइन कर दिए थे? क्या आस्था पेपर पर साइन करके अरमान से बच पाएगी या हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए क्रूअल अरमान की जिंदगी में कैद? जानने के लिए बने रहिए दोस्तों।